एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, देखने में तो शायद लगे कि ये सिर्फ फोटोग्राफी के बारे में है, पर असल में ये बहुत गहरी है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं रोला बाठे की मशहूर किताब कैमरा ल्यूसिडा, फोटोग्राफी पर चिंतन।
अब कई लोग सोच सकते हैं फोटोग्राफी मतलब ठीक है, तस्वीरें खींचते हैं, देखते हैं, इसमें इतना क्या सोचना।
सही बात है, लेकिन आप सोचिए आज का जो जमाना है, हम हर पल मतलब हर पल तस्वीरों से घिरे हैं, फोन में, सोशल मीडिया पर, हर जगह।
बिल्कुल, तो ये समझना अहम हो जाता है कि ये तस्वीरें हमसे कहती क्या हैं, इनका हम पर असर क्या होता है।
क्या हर तस्वीर बस बस एक तस्वीर है, या कुछ तस्वीरों में कुछ ऐसा होता है जो जो हमें अंदर तक छू जाता है? बात की ये किताब हमें तस्वीरों को सिर्फ देखने के बजाय महसूस करने का एक नया नजरिया देती है। वो पूछते हैं, फोटोग्राफी का असली जादू क्या है ना?
हाँ बिल्कुल, तो चलिए इसी जादू को समझने की कोशिश करते हैं रोलाम बार्थ के साथ।
पहले लेखक को थोड़ा जान ले। रोलाम बार्थ मतलब 1915 से 1980 तक फ्रांस के बहुत ही माने हुए विचारक थे।
हाँ, साहित्यिक आलोचक और खास तौर पर संकेत विज्ञानी, जिसे अंग्रेजी में सेमियोटिशन कहते हैं।
सही, मतलब वो संकेतों, प्रतीकों और उनके पीछे छिपे अर्थों को समझने में माहिर थे। उनकी दूसरी किताबें ना, जैसे मिथोलॉजीज, वो इसी तरह के विश्लेषण के लिए जानी जाती हैं।
हाँ, चीजों की चीर फाड़ करके उनके सांस्कृतिक मतलब निकालना, इसमें तो वो उस्ताद थे। लेकिन कैमरा ल्यूसिडा ये थोड़ी हटके है।
कैसे?
ये किताब उन्होंने लिखी थी 1977 में, जब उनकी माँ का देहांत हुआ। उसके फौरन बाद वो गहरे शोक में थे।
ओहो,
तो इसमें सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, इसमें एक टूटा हुआ दिल भी शामिल है।
अच्छा, और शायद यही बात इसे इतनी खास बनाती है ना, कि यहाँ उनका अकादमिक दिमाग और उनका वो गहरा व्यक्तिगत दर्द, वो एक साथ आ जाते हैं।
हाँ
वो फोटोग्राफी को किसी बाहरी चीज की तरह नहीं देख रहे हैं, वो उसे अपने दुख, अपनी यादों, प्रेम और नुकसान उस चश्मे से देख रहे हैं। ये किताब एक तरह से एक यात्रा है, एक विचारक की जो अपनी माँ की तस्वीर में उनकी आत्मा खोजना चाह रहा है।
तो फिर किताब का बड़ा आइडिया क्या है, मतलब क्या कहना चाहते हैं बार्थ?
वो फोटोग्राफी के एसेंस या सार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस सवाल से जूझते हैं कि हजारों तस्वीरों में से वो कौन सी एक तस्वीर होती है जो हमें हमें एकदम से झकझोर देती है। क्यों कुछ तस्वीरें बस दिमाग में अटक जाती हैं? और वो एक बहुत ही दिलचस्प नतीजे पर पहुंचते हैं। बार्थ कहते हैं कि फोटोग्राफी का असली सार, उसका नुएन इस बात में है कि वो हमें एक अकाट्य, मतलब जिसे टाला ना जा सके, तैसा सबूत देती है।
सबूत किस बात का?
हर तस्वीर चुपचाप ये कहती है, That has been।
दैट हैज बिन,
हाँ,
यानी ये सचमुच था। तस्वीर सिर्फ ये नहीं दिखाती कि कोई चीज कैसी दिखती थी, बल्कि ये पक्का करती है, ये प्रमाणित करती है कि वो चीज, वो इंसान, वो पल, वो वास्तव में अस्तित्व में था।
अरे वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब तस्वीर सिर्फ एक कॉपी नहीं है, बल्कि अतीत की सच्चाई का एक टुकड़ा है जो हमारे हाथ में है, जैसे जैसे कोई फॉसिल।
बिल्कुल, क्या बढ़िया मिसाल दी। जैसे फॉसिल सिर्फ डायनासोर जैसा दिखता नहीं, वो सबूत है कि डायनासोर थे, वैसे ही तस्वीर उस पल के होने का सबूत है।
समझ गई।
और पूरी किताब इसी विचार के आसपास घूमती है। पहले हिस्से में बार्थ फोटोग्राफी को समझने के लिए दो औजार बनाते हैं, स्टूडियम और पंक्टम।
स्टूडियम और पंक्टम, ये थोड़े अजीब नाम है।
हाँ है, लेकिन अहम है। और दूसरे हिस्से में ये खोज बहुत निजी हो जाती है, जब वो अपनी माँ की तस्वीरों के जरिए समय, याददाश्त और मौत के साथ फोटोग्राफी के रिश्ते को टटोलते हैं। तो चलिए पहले इन औजारों को समझते हैं, स्टूडियम और पंक्टम। ये क्या बला है?
हाँ, देखिए, ये शब्द शुरू में थोड़े भारी लग सकते हैं, पर इनका मतलब समझना जरूरी है। बार्थ कहते हैं, जब हम कोई तस्वीर देखते हैं ना, तो आमतौर पर हम उसमें स्टूडियम देखते हैं।
स्टूडियम,
हाँ, स्टूडियम यानी तस्वीर में हमारी वो सामान्य सांस्कृतिक दिलचस्पी।
अच्छा,
इसका विषय क्या है, किसने खींची, क्यों खींची, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। जैसे
जैसे कोई युद्ध की तस्वीर या किसी नेता का पोर्ट्रेट,
बिल्कुल, या कोई खूबसूरत लैंडस्केप।
ये हमें जानकारी देती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं, हमें पसंद आ सकती हैं, ये वो हिस्सा है जिसे हम समझ सकते हैं, जिसके बारे में बात कर सकते हैं, ये है स्टूडियम।
ठीक है, तो स्टूडियम हुआ तस्वीर का वो मतलब जो लगभग सबको समझ आता है, जो उसकी जानकारी या उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा है, जैसे हम अखबार में तस्वीर देखकर खबर समझ लेते हैं।
बिल्कुल सही। लेकिन फिर आता है पंक्टम, और यहीं पर बात एकदम पर्सनल और थोड़ी रहस्यमयी हो जाती है।
पंक्टम, इसका क्या मतलब है?
पंक्टम लैटिन शब्द है, इसका मतलब है चुभन, कोई घाव, एक नुकीला बिंदु। बार्थ कहते हैं कि कभी कभी तस्वीर में कोई छोटी सी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड डिटेल होती है जो हमें तीर की तरह लगती है, सीधा दिल में चुभ जाती है।
दिलचस्प, मतलब ये जानबूझकर नहीं डाली जाती, फोटोग्राफर का इरादा नहीं होता।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ना ही ये तस्वीर का मुख्य विषय होता है। ये कोई बहुत छोटी सी चीज हो सकती है, किसी के जूते का टूटा हुआ फीता, किसी अजनबी के थोड़े खराब दांत दिख जाना, या किसी कोने में रखी कोई मामूली सी चीज। बार्थ कहते हैं इसे हम ढूंढते नहीं, ये हमें ढूंढ लेता है, और ये पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है। जो चीज मुझे पंक्टम की तरह चुभेगी, जरूरी नहीं वो आपको भी चुभे।
अच्छा,
ये तर्क से परे है, इसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। ये तस्वीर का वो हिस्सा है जिसे हम समझते नहीं, बल्कि जिससे हम प्यार करने लगते हैं, या जो हमें घायल कर देता है।
वाओ, तो स्टूडियम दिमाग के लिए है और पंक्टम दिल के लिए, कुछ ऐसा।
स्टूडियम साझा है, पंक्टम एकदम निजी।
हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं, स्टूडियम में पसंद लाइक होता है, पंक्टम में प्रेम या घाव। कोई उदाहरण सोचें।
हाँ, जैसे कभी कोई पुरानी फैमिली फोटो देखी हो और उसमें किसी दूर के रिश्तेदार के हाथ की घड़ी या उनके चेहरे पर आई एक खास मुस्कान ने अचानक आपको रोक दिया हो।
बिल्कुल, बिल्कुल सही उदाहरण। भले ही तस्वीर किसी और मौके की थी, लेकिन वो छोटी सी डिटेल आपको उस इंसान के बहुत करीब ले आई। शायद वही आपका पंक्टम था उस तस्वीर में।
समझ गई, ये तो बहुत ही अनोखा तरीका है तस्वीरों को देखने का,
है ना? तो इन विचारों को, स्टूडियम और पंक्टम को समझने के बाद, बार्थ हमें उस निजी सफर पर ले जाते हैं जो उनकी माँ की मृत्यु के दुख से शुरू होता है।
हाँ, किताब का दूसरा भाग बहुत बहुत मार्मिक है। माँ के गुजर जाने के बाद बार्थ उनकी पुरानी तस्वीरों को देखना शुरू करते हैं। वो उस माँ को खोजना चाहते हैं जिसे वो जानते थे, जिसका प्यार उन्होंने महसूस किया था। लेकिन उन्हें निराशा होती है। ज्यादातर तस्वीरों में उन्हें अपनी माँ की वो असली झलक, वो एसेंस नहीं मिलता। उन्हें लगता है ये तस्वीरें या तो सिर्फ बाहरी रूप दिखाती हैं या उनकी पहचान के अलग अलग पहलू, लेकिन वो संपूर्ण माँ नहीं।
ये तो बहुत दुखद अनुभव रहा होगा, अपनी ही माँ की तस्वीरों में उन्हें न ढूंढ पाना।
बिल्कुल। और फिर कई तस्वीरों को खंगालने के बाद उन्हें एक तस्वीर मिलती है, एक पुरानी थोड़ी धुंधली सी तस्वीर जिसे वो विंटर गार्डन फोटोग्राफ कहते हैं।
विंटर गार्डन फोटोग्राफ?
हाँ, इसमें उनकी माँ करीब 5 साल की बच्ची हैं, अपने भाई के साथ खड़ी हैं। ये तस्वीर शायद 1898 के आसपास की है।
ओह, काफी पुरानी।
हाँ,
बार्थ इस तस्वीर का वर्णन करते हैं, उस बच्ची की मासूमियत, उसकी आंखों की कोमलता, उसकी मुद्रा, उसमें उन्हें अपनी माँ का असली सार, उनकी, क्या कहें, आत्मा दिख जाती है।
तो क्या वो ये तस्वीर किताब में छापते हैं, हमें दिखाते हैं?
नहीं, और यही बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसे नहीं छापते।
क्यों?
क्योंकि वो जानते हैं कि जो चीज उनके लिए इतनी गहरी, इतनी निजी है, उनका वो परम पंक्टम, वो शायद दूसरों के लिए सिर्फ एक पुरानी अजनबी बच्ची की तस्वीर होगी, मतलब सिर्फ स्टूडियम। वो उस अनुभव की निजता को बनाए रखना चाहते हैं।
ये बात भी सही है। और इसी अनुभव से वो अपने उस बड़े विचार पर पहुंचते हैं, फोटोग्राफी के सार, यानी नोएम।
नोएम?
हाँ, बिल्कुल। उन्हें एहसास होता है कि विंटर गार्डन फोटो का असली पंक्टम सिर्फ उस बच्ची की मासूमियत नहीं, बल्कि वो अकाट्य सत्य है कि वो वहां थी, वो सचमुच उस पल में वैसी ही मौजूद थी। यही फोटोग्राफी का सार है। दैट हैज बीन,
दैट हैज बीन।
तस्वीर सिर्फ याद नहीं दिलाती, वो प्रमाणित करती है। वो अतीत के उस लम्हे को सीधे हम तक पहुंचाती है, जैसे जैसे गर्भनाल माँ को बच्चे से जोड़ती है। ये सीधा भौतिक कनेक्शन ही फोटोग्राफी को दूसरी कलाओं जैसे पेंटिंग या साहित्य से अलग करता है।
लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, है ना? अगर तस्वीर साबित करती है कि कुछ था, तो वो ये भी तो इशारा करती है कि वो अब वैसा नहीं है, या शायद है ही नहीं।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं बार्थ फोटोग्राफी को सीधे सीधे समय और मृत्यु से जोड़ देते हैं।
मृत्यु से?
हाँ, हर तस्वीर गुजरे हुए वक्त का निशान है, नश्वरता का प्रमाण है। बार्थ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं।
वो कहते हैं कि जब हम किसी जीवित इंसान की तस्वीर देखते हैं तो अनजाने में हम उसमें उसकी भविष्य की मृत्यु देख रहे होते हैं।
भविष्य की मृत्यु
कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि ये पल बीत चुका है, वो इंसान भी बदलेगा, बूढ़ा होगा और अंततः नहीं रहेगा। तस्वीर उस पल को पकड़ लेती है, लेकिन जीवन तो आगे बढ़ जाता है।
और मृत व्यक्ति की तस्वीर?
तस्वीर उस गुजरे हुए होने का सबूत तो है, लेकिन साथ ही उस न होने का भी एहसास कराती है। इसलिए बार्थ फोटोग्राफी को एक तरह की सपाट मृत्यु कहते हैं।
सपाट मृत्यु?
हाँ, समय को जमा देना, उसे जीवन के प्रवाह से बाहर निकाल देना, ये एक तरह की मृत्यु ही तो है।
ये तो बहुत ही गहरा और शायद थोड़ा उदास करने वाला नजरिया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं इस किताब से?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात है स्टूडियम और पंक्टम का फर्क।
हाँ,
यानी तस्वीर का वो आम मतलब जो सब समझते हैं, और वो निजी अनकही चुभन जो सिर्फ हमें महसूस होती है। ये हमें सिखाता है कि तस्वीरों से हमारा रिश्ता कितना व्यक्तिगत हो सकता है।
दूसरी बात, फोटोग्राफी का वो अनोखा सार, दैट हैज बीन।
हाँ, कि तस्वीर सिर्फ दिखावा नहीं, सबूत है। वो कहती है ऐसा सच में हुआ था, ये उसकी जादुई शक्ति है
जो उसे पेंटिंग या ड्राइंग से अलग करती है।
बिल्कुल। तीसरी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, फोटोग्राफी और मृत्यु का वो गहरा रिश्ता। हर तस्वीर समय को रोकने की कोशिश है, और इसलिए वो गुजरे हुए पल हानि और नश्वरता का प्रतीक भी बन जाती है। वैसे भारत में हम अपने पूर्वजों की तस्वीरें घरों में सहेज कर रखते हैं, है ना? उनकी पूजा भी करते हैं कई लोग।
हाँ, ये तो है।
ये शायद इसी दैट हैज बीन को महसूस करने का, उनके होने को प्रमाणित करने का हमारा अपना तरीका है।
ये दिलचस्प कनेक्शन है। चौथी बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है वो है व्यक्तिगत अनुभव का महत्व।
हाँ, कि बार्थ किसी ठंडे वैज्ञानिक विश्लेषण के बजाय अपने निजी एहसास को ज्यादा तवज्जो देते हैं।
ये याद दिलाता है कि कला या तस्वीरों को महसूस करने का कोई एक सही तरीका नहीं होता, हमारा अपना अनुभव मायने रखता है।
सही कहा। और आखिर में शायद भाषा की सीमा।
भाषा की सीमा मतलब
पंक्टम जैसी चीज को शब्दों में पकड़ना कितना मुश्किल है। बार्थ खुद चुभने, घायल करने जैसे शब्दों का सहारा लेते हैं। ये दिखाता है कि तस्वीरों का असर शायद हमारी सोच से ज्यादा गहरा होता है, जिसे पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता।
हाँ, ये बात भी है। इस किताब में कई पंक्तियां ऐसी हैं जो इन विचारों को बहुत खूबसूरती से कहती हैं। कुछ यादगार विचारों को देखें जरा।
हाँ जरूर। जैसे बार्थ कहते हैं, एक तस्वीर हमेशा अदृश्य होती है, हम उसे नहीं देखते। अजीब लगता है सुनने में, है ना?
हाँ, मतलब हम तो तस्वीर ही देखते हैं।
उनका मतलब है कि जब हम कोई तस्वीर देखते हैं तो हम माध्यम को, कागज को, स्क्रीन को भूल जाते हैं। हम सीधे विषय में खो जाते हैं। तस्वीर खुद पारदर्शी हो जाती है, हम उसके आर पार देखते हैं।
अच्छा, ये मतलब है। एक और विचार है, तस्वीर अतीत को वापस नहीं बुलाती, ये प्रमाणित करती है कि जो मैं देख रहा हूँ वो वास्तव में अस्तित्व में था।
ये वही दैट हैज बीन वाली बात। तस्वीर याद दिलाने का औजार कम, सबूत ज्यादा है। वो पुष्टि करती है, इट अटेस्ट्स।
एक और दिलचस्प बात, जिसे मैं नाम दे सकता हूँ वो वास्तव में मुझे चुभ नहीं सकता। नाम देने में असमर्थता एक अच्छा लक्षण है।
ये पंक्टम के बारे में है। अगर आप ठीक ठीक बता सकें कि कोई चीज आपको क्यों छू रही है, तो शायद उसका असली गहरा असर वो खत्म हो गया है। पंक्टम की ताकत उसके रहस्य में है, उसकी अकथनीयता में, जिसे समझाया ना जा सके।
और आखिर में वो चौंकाने वाली बात, मृत्यु उस तस्वीर का ईडोस, सार है।
ईडोस यानी एसेंस, सार मतलब समय को रोक देना, किसी पल को हमेशा के लिए जमा देना, ये अपने आप में जीवन के प्रवाह को रोकना है, एक तरह की मृत्यु। इसलिए हर तस्वीर, चाहे वो कितनी भी जिंदा दिल लगे, कहीं ना कहीं मौत का भी ख्याल दिलाती है।
ये सब बातें सुनने में बहुत बहुत फिलोसफिकल लगती हैं, लेकिन इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? हम इन विचारों का क्या करें?
मुझे लगता है इनका बहुत लेना देना है। सबसे पहले तो हम अपने पारिवारिक एल्बम या फोन गैलरी को अलग नजर से देख सकते हैं।
कैसे?
अगली बार जब आप पुरानी तस्वीरें देखें तो सिर्फ ये ना देखें कि कौन क्या कर रहा था या कहाँ गए थे, कोशिश करें महसूस करने की क्या किसी तस्वीर में आपको अपने किसी प्रियजन की वो खास झलक, वो सार मिलता है जिसे बार्थ ढूंढ रहे थे। क्या कोई पंक्टम आपको छूता है?
ये वाकई एक अच्छा अभ्यास हो सकता है, अपनी दादी की उस एक तस्वीर को ढूंढना जिसमें उनकी मुस्कान सबसे असली लगती है। दूसरा, मीडिया साक्षरता के लिए भी ये विचार काम के हैं।
मीडिया साक्षरता, वो कैसे?
हम रोजाना सोशल मीडिया पर हजारों तस्वीरें देखते हैं, है ना? स्टूडियोम और पंक्टम का फर्क हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि कौन सी तस्वीर सिर्फ जानकारी दे रही है या एक तयशुदा संदेश पहुंचा रही है, वो हुआ स्टूडियम, और कौन सी वाकई हमसे कोई सच्चा भावनात्मक रिश्ता बना रही है, पंक्टम, या शायद बनाने का नाटक कर रही है।
हाँ, ये फर्क करना जरूरी है आजकल।
और तीसरा, शोक और हानि के समय में बार्थ का अपना अनुभव दिखाता है कि तस्वीरें दुख में एक एक अजीब सा सहारा बन सकती हैं।
सहारा कैसे? इसलिए नहीं कि वो गुजरे हुए को वापस लाती हैं, वो तो नहीं ला सकती, बल्कि इसलिए कि वो उनके होने का, उनके अस्तित्व का प्रमाण देती हैं। किसी प्रियजन की तस्वीर देखना उनकी अनुपस्थिति को मिटाता नहीं, पर उनके कभी होने की सच्चाई को मजबूत करता है।
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख शायद यही रही कि फोटोग्राफी जैसी चीज, जिसे हम अक्सर तकनीक या कला की नज़र से देखते हैं, वो इतनी गहराई से हमारे व्यक्तिगत दुख, प्रेम और अस्तित्व के सवालों से जुड़ी हो सकती है।
हाँ,
और फोटोग्राफी का मौत से वो अनिवार्य रिश्ता, ये सोचना ही अपने आप में बहुत कुछ बदल देता है।
मेरे लिए भी, और मुझे पंक्टम का आइडिया बहुत पसंद आया। ये उन क्षणों को समझने में मदद करता है जब कोई अनजान तस्वीर भी हमें अंदर तक खींच लेती है, रोक लेती है। ये याद दिलाता है कि तस्वीरें सिर्फ कागज पर रंग या स्क्रीन पर पिक्सल नहीं है, वे अतीत की सच्चाई के टुकड़े हैं जो समय के पार हम तक पहुंचते हैं। श्रोताओं के लिए शायद यही एक आखिरी सवाल छोड़ा जा सकता है।
हाँ, क्या?
अगली बार जब कोई तस्वीर आपको बेवजह रोक ले, अपनी तरफ खींचे, तो जरा सोचिएगा, क्या ये आपका पंक्टम है? वो कौन सी छोटी सी बात है जो आपको भेद रही है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए प्रस्तुत है एकत्र फाउंडेशन द्वारा।